13 अक्टूबर रविवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। सीरिया में तुर्की की सैन्य कार्रवाई चौथे दिन भी जारी। कुर्द लड़ाकों ने कहा उन्हें बचाना अमेरिका की नैतिक जिम्मेदारी। 23 साल बाद चीन के राष्ट्रपति का नेपाल दौरा। फिल्मों की कमाई को अर्थव्यवस्था की चुस्ती बताने वाले केंद्रीय मंत्री के दावे में कितना है दम।
एनएसएसओ पे सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सारी जो आंकड़े आते हैं उन पे कहीं ना कहीं वो सवाल उठा रहे हैं, तो फिर किस आधार पे सरकार नीति बना रही है।
सुनिए बातचीत एनसीपी नेता सुप्रिया सूले के साथ।
प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी दिल्ली में हिंदी में बोलते हैं, वही महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री मराठी में बोलते हैं। ये तो कॉपी करके पास होने वाली बात है।
होगी उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। उत्तरी सीरिया में तुर्की से लड़ रहे कुर्द लड़ाकों ने कहा है कि उनकी मदद करना अमेरिका की नैतिक जिम्मेदारी है। कुर्दों ने अमेरिका पर सुरक्षा देने का वादा करके उन्हें अकेला छोड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने अमेरिका से वहां के हवाई क्षेत्र को तुर्की के सैन्य जहाजों के लिए बंद करने की अपील की है। वहीं फ्रांस ने तुर्की के सैन्य हमले के विरोध में उसके साथ हथियारों के निर्यात को निलंबित कर दिया है। उत्तरी सीरिया में मानवीय संकट भी गहराता जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। अपने घर से विस्थापित एक महिला ने अपनी परेशानियां इस तरह बताई। हम बहुत मजबूर हैं। अर्दोगान हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? आप देखें रसलेन में क्या हो रहा है। दुनिया से हम क्या कहें, उन्होंने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली हैं। कल से हम और हमारे बच्चे भूखे हैं। ये थे उत्तरी सीरिया में विस्थापित एक महिला के शब्द। चक्रवाती तूफान हेगिबिस के कारण मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं ने जापान के ज्यादातर हिस्सों को अस्त व्यस्त कर दिया है। एक कार के पलटने से एक शख्स की मौत हो गई है। तूफान के चलते 60 लोग घायल हो गए हैं और एक जगह हुए भूस्खलन में 2 घर तबाह हो गए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक जापान में कम से कम 7 नदियां उफान पर हैं। राजधानी टोक्यो और आसपास के इलाकों में 4,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है। टोक्यो में रहने वाले एक शिक्षक एंड्रयू हिंगिस ने मौजूदा हालात के बारे में बताया।
You look outside and you're, oh, it's just raining. And then all of a sudden you just get hit with this giant.
घर से बाहर देखने पर सिर्फ बारिश दिखाई पड़ती है। तभी अचानक से तेज हवा का थपेड़ा पड़ता है जो आपको अंदर की तरफ धकेल देता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में आंधी सहन कर पाने वाले दरवाजे हैं। मैं अंदर सुरक्षित बैठ सकता हूँ, लेकिन आप घर के अंदर भी इसे महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कोई ट्रेन गुजर रही हो जो आपके घर को हिला कर रख देती है। ये थे टोक्यो में रहने वाले एक शख्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में एक मस्जिद पर चरमपंथी हमला हुआ है। सालामूसी गांव की मस्जिद में अचानक हुई गोलीबारी में 16 लोगों की जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मरने वालों में सभी मुसलमान थे जो मस्जिद में शुक्रवार शाम को नमाज के लिए आए थे। इस हमले के बाद राजधानी वागाडुगू में लोग सुरक्षा व्यवस्था की बिगड़ती हालत और विदेशी सेना की मौजूदगी को लेकर सड़कों पर उतर आए। इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो ने कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद राजधानी कीटो और उसके आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। शनिवार दोपहर से विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों पर सेना का नियंत्रण है। इक्वाडोर में सरकारी खर्चों में कटौती के चलते हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे। इस दौरान एक इमारत को आग लगा दी गई और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। केन्या में सोमालिया के साथ लगी सीमा के पास एक बम विस्फोट में करीब 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पुलिसकर्मियों की गाड़ी सड़क किनारे रखे एक विस्फोटक से टकरा गई थी। अधिकारियों का कहना है कि ये विस्फोटक चरमपंथी संगठन अल शबाब द्वारा रखा गया था। पिछले 4 महीनों में केन्या में हुआ ये चौथा हमला है। जून में सीमा पर हुए एक विस्फोट में केन्या के 12 पुलिसकर्मी मारे गए थे। चीन में पिछले महीने कारों की बिक्री में फिर से गिरावट आई है। इसे देश की अर्थव्यवस्था में आ रही मुश्किलों का संकेत माना जा रहा है। इस साल सितंबर में सिर्फ 20 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले 7% कम है। इसे पिछले साल शुरू हुई मंदी से जोड़कर देखा जा रहा है। बिक्री में आई इस कमी के पीछे धीमी आर्थिक वृद्धि, उत्सर्जन के कड़े मानकों और सब्सिडी में कटौती को कारण बताया गया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी संदीप सोनी के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत सीरिया से, जहां कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तुर्की की सैन्य कार्रवाई लगातार चौथे दिन जारी है। तुर्की का सामना कर रहे कुर्द लड़ाकों ने अमेरिका से अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने और तुर्की को हमले से रोकने की अपील की है। वहीं फ्रांस ने अपने नेटो सहयोगी तुर्की के लिए हथियारों का निर्यात फिलहाल रोक दिया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए कमलेश मठेनी से।
उत्तरी सीरिया में तुर्की के हमलों का सामना कर रहे कुर्द लड़ाकों ने कहा है कि उनकी मदद करना अमेरिका की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अमेरिका पर सुरक्षा देने का वादा करने के बावजूद भी उन्हें अकेला छोड़ने का आरोप लगाया है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ के प्रवक्ता रेदुर खलील ने कहा कि कुर्दों ने ईमानदारी बरती लेकिन सहयोगियों ने निराश किया। ISIS के खिलाफ लड़ाई के दौरान हमारे साथ कई सहयोगी थे। हम उनके साथ पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ लड़ते रहे, जो कि हमारी संस्कृति और परंपरा में बसा हुआ है। लेकिन हमारे सहयोगियों ने अचानक बिना किसी चेतावनी के हमें अकेला छोड़ दिया। ये कदम बेहद निराशाजनक और पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। रेदुर खलीक ने अमेरिका से ये भी मांग की है कि वो इलाके के हवाई क्षेत्र को तुर्की के सैन्य विमानों के लिए बंद कर दे। हम अपने सहयोगियों से उनकी जिम्मेदारी और नैतिक दायित्वों को निभाने की मांग करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो अपने सैनिकों को सीमा पर मरने के लिए भेजें। हम बस ये चाहते हैं कि वो यहाँ के हवाई क्षेत्र को तुर्की के जंगी जहाजों के लिए बंद कर दें, और ये करना उनके लिए आसान है। ये थे सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज के प्रवक्ता के शब्द। फ्रांस ने तुर्की के सैन्य हमले के विरोध में अपने नेटो सहयोगी तुर्की के साथ हथियारों के निर्यात को निलंबित कर दिया है। फ्रांस के विदेश और रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस संबंध में जल्द ही कदम उठाए जाएंगे और सैन्य अभियान में शामिल होने वाले हर हथियार पर ये लागू होगा। इससे पहले जर्मनी ने कहा था कि वह तुर्की को हथियारों की बिक्री में कटौती कर रहा है। फ्रांस ने कहा है कि अगले हफ्ते होने वाले यूरोपीय संघ सम्मेलन में तुर्की के खिलाफ प्रतिबंधों पर चर्चा की जाएगी। ये सम्मेलन सोमवार को होगा, जिसके बाद सामूहिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया आने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध के बावजूद भी उत्तरी सीरिया के सीमावर्ती इलाके रसलेन में लड़ाई जारी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने शनिवार को सैन्य अभियान रोकने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने इस्तांबुल में एक भाषण के दौरान कहा था कि वो कुर्द लड़ाकों के खिलाफ शुरू की गई लड़ाई नहीं रोकेंगे। उन पर ऐसा करने के लिए दबाव है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुर्की लगातार सैन्य कार्रवाई का बचाव करता आ रहा है। उसका कहना है कि वो कुर्द लड़ाकों को हटाकर एक सेफ जोन तैयार करना चाहता है, जिसमें लाखों सीरियाई शरणार्थी रह सकेंगे। तुर्की ने यह भी दावा किया है कि सुरक्षा बलों और सहयोगी सीरियाई विद्रोहियों ने रसलेन शहर को एसटीएफ से अपने कब्जे में ले लिया है। सीरियाई विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने सीमा से 30 किलोमीटर आगे तक की सड़क को बंद कर दिया है। इस इलाके में कई दिनों से तुर्की के विमान हवाई हमले कर रहे थे। इन हमलों के कारण उत्तरी सीरिया में मानवीय संकट भी पैदा हो गया है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के प्रवक्ता रूथ हेदरिंगटन ने बीबीसी से कहा कि लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं और इस कारण हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं।
सीरिया में तुर्की की सैन्य कार्रवाई चौथे दिन भी जारी। कुर्द लड़ाकों ने कहा उन्हें बचाना अमरीका की नैतिक जिम्मेदारी। रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी। बात चीन और नेपाल की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरा कल समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की अनौपचारिक मुलाकातों के सिलसिले को इसी तरह आगे बढ़ाया जाना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले अनौपचारिक दौरे पर चीन आने का न्योता दिया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर लिया। भारत के दो दिवसीय दौरे के बाद चीनी राष्ट्रपति कल शाम नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। 23 साल के बाद चीन का कोई राष्ट्राध्यक्ष नेपाल दौरे पर पहुंचा है। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने काठमांडू में बीबीसी संवाददाता सुरेंद्र फुयाल से बात की।
ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये शी जिनपिंग, चीन का रिश्ता हिमालय के उस पार जो मुल्क है दक्षिण एशिया में, भारत और नेपाल, उनसे मजबूत बनाने की दिशा में अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। नेपाल और चीन के बीच में जो साझेदारी है, चीन एक हिसाब से आर्थिक हिसाब से तरक्की कर रही है, नेपाल थोड़ा पीछा है। तो नेपाल को, नेपाल में पूर्वाधार विकास के लिए सहयोग करने के लिए उन्होंने अरबों रुपया वो साझेदारी के लिए सहयोग करने के लिए घोषणा की है। कल शाम नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से जो बातचीत हुई उसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यही बताया, वही खबर आई है। और उनका आज काठमांडू में और बातचीत करने के प्रोग्राम है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, विपक्षी दल के नेता शेर बहादुर देवा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेता है प्रचंड पुष्पकमल दाहाल, उनसे बातचीत करने के बाद दीवा भोज करके चीन वापस जाने की उनकी योजना है। तो नेपाल से वो लोग चीन से कोई रेल मार्ग भारत को जोड़ने की चाहना कर रहे हैं और वो त्रिदेशीय संबंध की बात कर रहे हैं, नेपाल भारत और चीन के बीच में त्रिदेशीय व्यापारिक संबंध।
दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक शी जिनपिंग इस समय है, उनका नेपाल आना कितना महत्वपूर्ण है, कितना मायने रखता है नेपाल के लिए?
बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन और भारत में भारत के नेताओं के बीच जितने फ्रीक्वेंसी पे अंतरक्रिया होता आ रहा है उतना फ्रीक्वेंसी से नहीं हो पा रहा है क्योंकि नेपाल आर्थिक हिसाब से ज्यादा तरक्की नहीं कर रहा है, ये भी एक वजह है। मगर उन्होंने महत्व दिया है, बहुत पुराना संबंध है नेपाल और चीन का भी, बीच में हिमालय है और वो कहते हैं कि हिमालय की तरह ही स्थिर है संबंध और बहुत मजबूत भी है। अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादा देर लगाई, इससे पहले 1996 में आज से 23 साल पहले जियांग ज़ेमिन आए थे चीन के राष्ट्रपति और इधर से उस वक्त नेपाल के स्वर्गीय राजा वीरेंद्र गए हुए थे।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेपाल दौरे के बारे में जानकारी दे रहे थे काठमांडू से बीबीसी संवाददाता सुरेंद्र फुयाल। भारत में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश में फिल्में अगर करोड़ों का कारोबार करती हैं तो फिर भारत में मंदी कहाँ है। फिल्मों की कमाई को भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत से जोड़ते हुए रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक है, तभी तो फिल्में इतना अच्छा बिजनेस कर रही हैं। लेकिन क्या जिस समीकरण को केंद्रीय मंत्री समझा रहे थे वो क्या वो वाकई में दुरुस्त है? जानने के लिए कुलदीप मिश्र ने अर्थशास्त्री और प्रोफेसर अरुण कुमार से बात की।
जो रोजगार के आंकड़े हैं एनएसएसओ के, वो एक हाउस होल्ड सर्वे होता है, उसके आधार पे किया जाता है। तो यानी कि सबको तो नहीं लिया जा सकता, पर लेकिन सैंपल सर्वे बनाते हैं जो कि सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। तो अगर ये रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे कि एनएसएसओ के आंकड़े आधिकारिक रूप से वो कह रहे हैं कि सही नहीं है या झूठे हैं, तो इसका मतलब है कि एनएसएसओ पे वो सवाल उठा रहे हैं, और अगर एनएसएसओ पे सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सारी जो आंकड़े आते हैं उन पे कहीं ना कहीं वो सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई कि सरकार के पास फिर आंकड़े कौन से हैं, तो फिर किस आधार पे सरकार नीति बना रही है। और दूसरी बात यह है कि जो आंकड़े आते हैं एनएसएसओ वगैरह के रोजगार के, उसके आधार पे फिर जीडीपी कैलकुलेट होता है, और अगर हमारे ये आंकड़े ही गलत हैं रोजगार के तो इसका मतलब हमारा जीडीपी के आंकड़े भी गलत हैं। तो ये तो एक बहुत ही मतलब ऐसी बात उन्होंने कह दी जिसके बहुत दूरगामी असर होगा।
जी, और एक और बात उन्होंने कही है वो फिल्मों से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा कि एक दिन में बॉलीवुड में 3 फिल्मों ने मिलकर के 120 करोड़ रुपए का कारोबार किया, तो ये इस बात का संकेत है कि कोई आर्थिक सुस्ती नहीं है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं फिल्म देखने के लिए भी।
देखिए ऐसा है कि फिल्म तो एक एंटरटेनमेंट है, तो आदमी जब परेशानी में भी होता है तो एंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्च करता है। अगर हम माने कि 120 130 करोड़ का कमाई हुई है पिछले वीकेंड में, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी रकम है जो कि हमारे इतनी बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसमें खर्च नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह कि अगर मंदी की बात है तो ये तो आंकड़े सरकारी तौर पे आ ही रहे हैं और इंडस्ट्री के तौर पे भी आ रहे हैं। वहां पे जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें 30-31% की गिरावट अगस्त में हुई, एफएमसीजी सेक्टर बोल रहा है कि उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम हो गया है, और उसी तरह ट्रांसपोर्टर्स बोल रहे हैं कि हमारे ट्रक मूवमेंट कम हो गया है, रेलवे बोल रहा है कि हमारा फ्रेट मूवमेंट कम हो गया है, तो उससे उनका जो ऑपरेटिंग रेशियो है उस पर बड़ा गलत असर पड़ रहा है और उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ रहा है। तो यानी कि कहीं एक दो जगह की बात नहीं है, रिटेल ट्रेड में गिरावट का मतलब हुआ कि जो खरीदारी कम हो गई है। तो इसलिए सिर्फ हम फिल्मों के आधार पर ये नहीं कह सकते कि देश में मंदी है या नहीं मंदी है। और अभी जो आंकड़ा कल आया है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, तो उसमें तो दिखा है कि पिछले 2 साल में पहली बार नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ है, मतलब कि गिरावट आ गई है उसमें।
उसी से जुड़ा मेरा एक आखिरी टिप्पणी में इसी से जुड़ी हुई मैं लेना चाहता था कि अर्थव्यवस्था की जो मौजूदा स्थिति है वो चिंता की बात है या एक कदम और आगे बढ़ के उसको संकट का समय माने?
नहीं, ऐसा है कि सरकार तो बात रखेगी कि भाई सब चीजें ठीक चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं एकाध सेक्टर में गिरावट ही है। वो अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे सेक्टर में, इसलिए मेरा मानना है कि इस समय एक तरह का क्राइसिस है, संकट है अर्थव्यवस्था के सामने, क्योंकि सरकार ने पिछले एक साल में कई कदम उठाए हैं, कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पे आए, रिजर्व बैंक ने पांचवी बार अपना इंटरेस्ट रेट काट दिया और सरकार ने तरह तरह के कंसेशन दिए हैं पिछले दो महीने में। सरकार के कदम लेने के बावजूद ये गिरावट है, और वजह उसकी ये है कि हमारा असंगठित क्षेत्र बड़ी बुरी तरह गिरा है पिछले तीन साल में, और सरकार डिनायल के मोड में रही। अब वो असंगठित क्षेत्र से परेशानी संगठित क्षेत्र में भी आ गई है, और जब तक असंगठित क्षेत्र में क्राइसिस खत्म नहीं होगा तो संगठित क्षेत्र अपने आप से उसको डील नहीं कर सकता।
भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था पर भारत के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के दावे की पड़ताल कर रहे थे अर्थशास्त्री और प्रोफेसर अरुण कुमार। कई जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच है, जबकि शिवसेना और कांग्रेस सहयोगी दल की भूमिका में है। इसलिए विपक्ष के गठबंधन में सबसे वरिष्ठ और बड़ा चेहरा एनसीपी प्रमुख शरद पवार का है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले इस वक्त बारामती लोकसभा सीट से सांसद हैं, लेकिन इस चुनाव में वो एनसीपी की स्टार प्रचारक बनकर उभरी हैं। लेकिन एनसीपी ऐसे दौर में चुनाव का सामना कर रही है जब उसके कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी या शिवसेना में चले गए हैं। बीबीसी संवाददाता अभिजीत कांबले ने सुप्रिया सूले से बात की और उनसे पहला सवाल यही पूछा कि ऐसे हालात में वो पार्टी का क्या भविष्य देखती हैं।
सिर्फ नेताओं से पार्टी नहीं बनती, पार्टी विचारों से, संघर्ष से और कार्यकर्ताओं से बनती है, और थोड़े अगर लोग भी चले जाए तो वो विचार खत्म नहीं होता। फिर से पार्टी में मेहनत करेंगे, नए लोग जुड़ते रहते हैं और अच्छा काडर बना के महाराष्ट्र की और देश की सेवा करेंगे।
क्या आपको नहीं लगता एन चुनाव के वक्त इस तरीके से नेता अगर जाते हैं तो इसी चुनाव में कुछ डैमेज पार्टी को हो सकता है?
ऐसे पहले स्पेकुलेशन हुआ करता था, लेकिन द गेम इज चेंज नाउ।
क्यों चेंज हुआ?
सबने मेहनत करी है, ऊपर आप देख रहे हैं जो जो हमको छोड़ के गए उनका क्या हाल वहाँ बन गया है, ना उनका मान है ना सम्मान है। यहाँ बड़े बड़े नेता करके उनका मान सम्मान हुआ करता था।
हम देख रहे हैं शरद पवार काफ़ी आक्रामक हुए हैं इस चुनाव के लेकिन में ईडी के खास करके जो मामला हुआ उसके बाद, तो क्या आपको लगता है शरद पवार के आक्रामक होने से जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो बदल जाएगा कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे वो बदल के दिखेंगे?
ये ईडी का सवाल नहीं है, ये लड़ाई सच्चाई की है। अगर किसी ने कुछ किया नहीं होगा और उसका नाम आप ऐसे ही डाल देंगे तो ये बात गलत है। तो हम ये जो दबाव तंत्र ये सरकार कर रही है उसके खिलाफ सच्चाई के लिए ये लड़ाई है, और मेरे ख्याल से ये इलेक्शन ईडी का यह सवाल नहीं है, ये विकास का है। और सब भूल गए चर्चा करने का कि विकास कहाँ, विकास तो घूम गया लगता है यहाँ, क्योंकि विकास छोड़ के हर बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री भी आप देखिए, जो मैं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी दिल्ली में हिंदी में बोलते हैं वही महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री मराठी में बोलते हैं, ये तो कॉपी करके पास होने वाली बात है। महाराष्ट्र एक बहुत डेवलपमेंट ओरिएंटेड, विकास ओरिएंटेड राज्य हुआ करता था, और देश का डेटा, मैं खुद का नहीं डेटा, आप देश का भी डेटा देखें जो इनकी सरकार का ही है, उसमें महाराष्ट्र के विकास के बारे में बहुत कोई अच्छा कोई नहीं बोल रहा, इनका इनकी सरकार नहीं बोल रही है।
ईडी के जो भी मामले हैं उसमें खासकर एनसीपी के नेताओं के नाम बार बार आते रहते हैं। इस पर उद्धव ठाकरे को जब पूछा गया सामना के इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा है कि जिनके हाथ में मैल लगा है उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी, वो तो फंसेंगे। आपका क्या कहना
है? मुझे हंसी आती है इस चीज़ पे, क्योंकि जो विरोधक है उसके हाथ गंदे है, जो बीजेपी में जाता है शिवसेना में जाता है वो धुल जाता है, और उनके यहाँ ऐसी मैजिक पाउडर है कि उसकी सारी इंक्वायरियाँ रुक जाती है।
भाजपा के बारे में आप काफ़ी आक्रामक हुए हैं लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में। यही भाजपा 2014 में जब सत्ता में आई तो एनसीपी ने जो स्टैंड लिया उस वजह से ये सरकार बच गई। एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि हमसे गलती होगी, आपको क्या लगता है इसमें?
नहीं, वो राज्य में फिर से इलेक्शन ना हो इसलिए वो निर्णय लिया था। हम लोग उनके साथ नहीं जा रहे थे, ज्वाइन कर नहीं रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ राज्य महाराष्ट्र में फिर से इतना बड़ा खर्चा ना हो इसीलिए वो निर्णय लिया गया था।
लेकिन क्या उसी वजह से ये सरकार टिक गई और जो 5 साल हुआ ये सब?
उनका तो सेना और उनका नंबर ही था, हमारा कोई सवाल ही नहीं था उसमें।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया सूले से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता अभिजीत कांबले। आज रविवार है और हर रविवार हम आपके लिए लेकर आते हैं पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा। आलेख इकबाल अहमद का है जिसे सुना रहे हैं अपूर्व कृष्ण।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते भी भारत प्रशासित कश्मीर से जुड़ी खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहीं। भारत ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से मिले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना आखिरी पत्ता खेल दिया है। शुक्रवार को राजधानी इस्लामाबाद में भारत प्रशासित कश्मीर के लोगों के समर्थन में आयोजित रैली में इमरान खान भी शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए इमरान ने कहा, मोदी का आखिरी पत्ता प्रताड़ित कश्मीरियों के लिए आज़ादी का रास्ता बनेगा। अखबार नवाए वक्त के मुताबिक इमरान ने कहा कि कश्मीरियों के लिए उनका आंदोलन एक समंदर बन जाएगा। इमरान ने कहा कि मोदी कश्मीरियों को दबाने में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अखबार के अनुसार उन्होंने इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मीडिया हांगकांग के आंदोलन को तो सुर्खियां बनाकर पेश करता है, लेकिन भारत प्रशासित कश्मीर से जुड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ना के बराबर है। पाकिस्तान के एक धार्मिक और सियासी संगठन जमाते इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने इमरान खान पर हमला करते हुए कहा कि इमरान खान कश्मीरियों के हक में सिर्फ बातें करते हैं। अखबार दुनिया के अनुसार कश्मीर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि वो भारत के खिलाफ जीत या शहादत तक लड़ेंगे। इमरान खान को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा, अगर सरकार कश्मीर पर जिहाद का ऐलान नहीं करती तो हम सरकार के खिलाफ जिहाद का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के नेता LOC पार करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान इजाजत नहीं देते हैं। सरकार बताए कि वो अल्लाह को खुश करना चाहती है या ट्रंप को। सिराजुल हक ने कहा कि इमरान खान पहले कह रहे थे कि मुझे संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से लौटकर आने दें, उसके बाद कश्मीर के बारे में कोई प्रभावी कदम उठाया जाएगा। सिराजुल हक ने कहा कि वहां से लौटने के बाद इमरान खान कह रहे हैं कि जो LOC पार करेगा वो पाकिस्तान का गद्दार है। अखबार जंग के अनुसार सिराजुल हक ने कहा कि इमरान खान के बयान से नरेंद्र मोदी को हौसला मिला है और कश्मीरी मायूस हुए हैं। सिराजुल हक ने इमरान खान पर कटाक्ष करते हुए कहा, पूरी कौम जाग उठी है लेकिन इस्लामाबाद का टीपू सुल्तान सो रहा है। अखबार एक्सप्रेस ने इसी खबर पर सुर्खी लगाई है, कौम भारत से दो दो हाथ करने को तैयार मगर सुल्तान टीपू तैयार नहीं। लेकिन इमरान खान को समर्थन भी मिल रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इमरान खान का समर्थन किया है। अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी संसद के अध्यक्ष असद कैसर से बातचीत के दौरान कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इमरान खान ने अपने भाषण के जरिए पूरी इस्लामी दुनिया और कश्मीरियों की सच्चे अर्थों में नुमाइंदगी की है। अखबार लिखता है कि अर्दोगान ने कश्मीर समस्या के हल होने तक तुर्की के समर्थन का आश्वासन दिलाया। इसके अलावा भारत की एक छोटी सी खबर भी पाकिस्तानी अखबारों में इस हफ्ते सुर्खियों में रही। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी के पर्स चोरी का है। मोदी की भतीजी दमयंती बेन मोदी का शनिवार को दिल्ली में कुछ लोगों ने पर्स झपट लिया। इस खबर को पाकिस्तान के सारे अखबारों ने प्रमुखता से कवर किया है। अखबार जंग ने सुर्खी लगाई है, भारत में मोदी का परिवार भी सुरक्षित नहीं, भतीजी को डाकू ने लूट लिया। अखबार लिखता है कि दिल्ली में हाल के दिनों में इस तरह के मामलों में तेजी आई है, लेकिन इस बार तो उनका निशाना भारत के सबसे ताकतवर व्यक्ति की भतीजी बन गई।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा सुना रहे थे अपूर्व कृष्ण। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत ने पुणे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन कल अपनी पकड़ बेहद मजबूत बना ली। भारत के पहली पारी में 5 विकेट पर 601 रन पर पारी समाप्ति की घोषणा के बाद दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 275 रन पर सिमट गई और भारत को पहली पारी के आधार पर 326 रनों की विशाल बढ़त मिली। वैसे एक समय दक्षिण अफ्रीका के 8 विकेट केवल 162 रन पर गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद पुछल्ले बल्लेबाजों ने पारी को संभाल लिया और उसे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। कप्तान फेफ डु प्लेसी ने 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 64 रन बनाए तो वर्नॉन फिलेंडर 192 गेंदों का सामना करते हुए 44 रन बनाकर नाबाद रहे। लेकिन कमाल की पारी खेली केशव महाराज ने, जिन्होंने तमाम भारतीय गेंदबाजों का लोहा लेते हुए 12 चौकों के सहारे 72 रन बनाए। उन्होंने वर्नॉन फिलेंडर के साथ 9वें विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी की। भारत के आर अश्विन ने 69 रन देकर 4 और उमेश यादव ने 37 रन देकर 3 विकेट झटके। अब देखना है कि 326 रन की बढ़त बनाने वाली भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका को फॉलो ऑन देते हैं या फिर दोबारा बल्लेबाजी के लिए पिच पर उतरकर एक बड़ा लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए रखते हैं। जबकि इस यक्ष प्रश्न का जवाब कल आर अश्विन ने ये कहकर दिया कि वो अभी इसके बारे में नहीं सोच रहे, कप्तान गेंदबाजों का दमखम देखकर निर्णय लेंगे।
At least I haven't thought about the follow-on. I think the captain will decide overnight on what he should be doing. It's also important how the bowlers recover tomorrow morning.
तो गेंदबाजों की थकान या जोश पर निर्भर करेगा follow-on. उधर रूस के उलान उदे शहर में जारी विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की स्टार मुक्केबाज MC मैरीकॉम का अभियान सेमीफाइनल में हार के साथ समाप्त हो गया। उनके अलावा जमुना बोरो और लवलीना बोरगोहेन भी हार कर बाहर हो गई। 51 किलो भार वर्ग में उतरी MC मैरीकॉम को सेमीफाइनल में टर्की की बुसेनाज कोकी रोगलू ने 4-1 से हराया, जबकि 69 किलो भार वर्ग में लवलीना को चीन की यांग लियू ने कड़े संघर्ष के बाद 3-2 से और 54 किलो भार वर्ग में जमुना बोरो को चीन ताइपे की हुआंग हसियाओ बेन ने एक तरफा 5-0 से हराया। इस तरह MC मैरीकॉम, लवलीना बोरगोहेन और जमुना बोरो को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। वैसे 48 किलो भार वर्ग में भारत की मंजू रानी फाइनल में पहुंच गई हैं। कल सेमीफाइनल में उन्होंने थाईलैंड की मुक्केबाज को 4-1 से हराया।
खेल समाचारों में आपने सुना बॉक्सर मैरीकॉम के बारे में, जो अपने नाम कई कीर्तिमान दर्ज करा चुकी हैं, लेकिन उन्हें मलाल है क्यों और किस बात का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैरीकॉम से बात कर रही हैं ज्योतिका सिंह।
जब मैं बड़ा होने के बाद 16-17-18 इयर्स में, मैं बचपन में जब मैं इतना खेलना कूदना, मैं खेल के कूद के क्या क्या भी बहुत सारे करके जिंदगी में मेरा जो कोई भी नहीं कर पाया वो भी करके आया, मतलब जब मैं चाइल्डहुड में। और बॉक्सिंग तो बाद में जब मैं बड़ी होने के बाद पता चला, और एक दिन मैंने लड़का लोग बॉक्सिंग ट्रेनिंग करा देखा मैंने, और उसमें एक दो लड़की भी साथ में है। जब मैं देखा था मैंने सोचा लड़की भी कर सकती है, तो मैं सोचा मैं क्यों नहीं कर सकती, लड़का कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। डायरेक्टली मैं जाके कोच को मिला और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं भी बॉक्सिंग करना चाहती हूँ, सर आप थोड़ा मेरा मदद करेगा क्या, ऐसे करके मैं परमिशन लिया। उससे पहले बॉक्सिंग में करने से पहले मैं बहुत पसंद किया बॉक्सिंग में, एक टेलीविजन में मैंने देखा है कि मोहम्मद अली का उसका फाइट, उससे मेरे को इंस्पायर हुआ।
इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद भारतीय महिला बॉक्सर MC मैरीकॉम को एक मलाल है।
कम से कम मैं वर्ल्ड चैंपियन में 2-3 बार मिला 4 बार मिला, कम से कम अभी ओलंपिक तो खेल रही हूँ। जब ओलंपिक नहीं खेलूंगी तो फिर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का वैल्यू है ही नहीं, कोई पता ही नहीं चल रहा है। मैं कितना बार वर्ल्ड चैंपियन बनने से भी तो वैल्यू अभी पता चलना ना, बिकॉज नाउ वुमेन बॉक्सिंग इज बिकम मोर पॉपुलर। कौन कौन जानता है, सिर्फ जो न्यूज थोड़ा जो पढ़ता है, थोड़ा छोटा सा फोटो लगाएगा और बस खत्म हो जाता है, इतना स्टोरी भी कोई नहीं पढ़ता है।
अब जाते जाते मैरीकॉम की जुबानी जाना जाए अगले साल टोक्यो 2020 ओलंपिक्स की कैसी चल रही है तैयारी।
तैयारी है तो बहुत अच्छे से चल रही है। इंडिया में तो अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आ गया किरण रिजिजू, वेरी एक्टिव एंड इज वेरी वेरी सपोर्टिव। उसने बहुत अच्छे से काम किया और हम लोग बहुत खुशी है।
ये थी बॉक्सर मैरीकॉम, और इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते मुख्य समाचार पुनः कमलेश मठेनी से।
BBC समाचार। उत्तरी सीरिया में तुर्की से लड़ रहे कुर्द लड़ाकों ने कहा है कि उनकी मदद करना अमेरिका की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अमेरिका से वहां के हवाई क्षेत्र को तुर्की के सैन्य विमानों के लिए बंद करने की अपील की है। चक्रवाती तूफान हेगिबिस के कारण मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं ने जापान के ज्यादातर हिस्सों को अस्त व्यस्त कर दिया है। एक कार के पलटने से एक शख्स की मौत हो गई है, तूफान के चलते 60 लोग घायल हो गए हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में एक मस्जिद पर चरमपंथी हमला हुआ है। साल मूसी गांव की मस्जिद में अचानक हुई गोलीबारी में 16 लोगों की जान चली गई है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो ने कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद राजधानी कीटो और उसके आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। शनिवार दोपहर से विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों पर सेना का नियंत्रण है। केन्या में सोमालिया के साथ लगी सीमा के पास एक बम विस्फोट में करीब 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।